अब आगे दोबारा हजरत सालेह का किस्सा। और समुद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को ये पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो यकायक वो दो झगड़ने वाले फरीक बन गए। सालेह अलैहि सलाम ने कहा है, मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से मगफरत तलब करते, शायद के तुम पर रहम फरमाया जाए? उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया। आज भी लोग यही कहते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। ये मनहूस, ये सारी लड़ाइयाँ दीन वालों की वजह से होती हैं। तो देखिए, सवाले नबी हैं और कौम क्या करिए, तुम बदशगुनी का शिकार हो, यानी तुम हमारी बदबख्ती का जरिया हो। अब सवाले अलैहि सलाम क्या कहते हैं आगे से, तुम बदबख्त, तुम्हारे साथ बदशगुनी नहीं। सवाले ने जवाब दिया, तुम्हारे नेको बदशगुन का सर रिश्ता तो अल्लाह के पास है, यानी अगर मैं हूँ तुम्हारे लिए मनहूस तो अल्लाह को बताए, और अगर मैं तुम्हारे हक में अच्छा हूँ तो अल्लाह को बताए। असल बात यह है कि ये तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। इस शहर में 9 जत्थेदार यानी गिरोह वाले थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इसलाह का काम ना करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम अहद कर लो कि हम सवाले और इसके घर वालों पर रात के वक्त हमला करेंगे, फिर इसके वली से कह देंगे कि हम इसके खानदान की हिलाकत के मौके पर मौजूद ही ना थे। वह मकरू मकरम व मकर ना मकरम व हम ला यशरून, हम बिल्कुल सच कहते हैं। ये चाल तो वो चले और एक चाल हमने चली जिसकी इनको खबर न हुई। अब देख लो इनकी चाल का इंजाम क्या हुआ, हमने तबाह करके रख दिया इनको और इनकी पूरी कौम को, वो इनके घर खाली पड़े हैं इस जुल्म की पादाश में जो वो करते थे। इसमें एक निशान इबरत है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और बचा लिया हमने इन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नाफरमानी से परहेज करते थे। क्या मिला आपको मुझे इस किस्से से, क्या निशान इबरत है कि जब अल्लाह के नाम पर कोई निकलता है अल्लाह उसकी मदद करता है। सवाल अल इस्लाम की जान लेने के लिए 7 लोगों का एक गैंग बना, रात को हमला करेंगे, और इस ऊंटनी की तो पकुंचे पहले से काट चुके थे। अल्लाह ने उनकी उस चाल को ऐसे जाया किया कि सुबह होते ही उनके ऊपर अजाब के तासुरात शुरू कर दिए। दूसरी बात देखिए, कल के दबे हुए लोग आज गालिब हो गए, बचा लिए इन लोगों को जो ईमान लाए। आज भी वही अल्लाह, आज भी अल्लाह के वही वादे हैं, सच्चा ईमान पैदा कर ले, फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद कैसे करता है। लेकिन बात यह कि असली ईमान वाले हों, खोटे नहीं, नकली नहीं, आधे ईमान वाले नहीं, आधा दीन आधा नहीं। यकीन कीजिए, आप कुरान पढ़ते हुए अपने दिल को इस पर मुतमईन पाएंगे। हर इशू इस वक्त जो दुनिया में फैला हुआ है ना, A to Z, उन सब के पीछे अगर सोल्यूशन लें तो पहला उसका हल क्या है कि उम्मत मुस्लिमा को एजुकेट करो, पहले वो ठीक मुस्लिम बने, फिर उसके बाद वो लोगों से बात करेंगे, फिर वो अपना किरदार दिखाएंगे। हमने उल्टी चाल चली, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। और लूत अलैहिस्सलाम को हमने भेजा, याद करो वो वक्त जबकि इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते बदकारी करते हो, क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो? देखिए कैसे जुमले हैं जिससे सोच उभरती है। ये जुमले बोलकर अगले बंदे के अंदर अगर थोड़ी सी भी खैर है तो उसको उभारा जा सकता है। हकीकत यह कि तुम लोग सब जहालत का काम करते हो, मगर इसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। तनकीद पसंद ना आई उनको, आखिरकार हमने बचा लिया इसको और इनके घर वालों को सिवाय उनकी बीवी के, जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था। और बरसाई इन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी वो इन लोगों के हक में जो मतनबह किए जा चुके थे। देखिए कौम लूत के साथ जो हुआ, एक खास सर्टन बस्ती थी सदूम नाम की, वहां पर यह हुआ। मैं पढ़ते हुए भी कांप गई। अगर आज भी अल्लाह ताला की यही सुन्नत काम में आ जाए, क्योंकि इस जुर्म की यही सजा दी थी अल्लाह ने, 5 अजाब लिखाए थे आपको पीछे, अगर आज ये दुनिया में हो जाए तो आपको ये बात पता है कि जब अल्लाह का अजाब आता है ना किसी कौम पे, तो कुछ नेक लोग भी तो वहां होते हैं। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा था कि अल्लाह ताला किसी बस्ती में अजाब डालता है, जब अजाब आता है तो फिर वहां कुछ नेक लोग भी होते हैं तो वो भी मारे जाएंगे, मसलन जलजला आता है तो कुछ उसमें नेक भी मारे जाते हैं, सैलाब में भी डूबते हैं, तो उनका क्या होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग मारे जाएंगे, बट क्यामत के दिन वो अपने आमाल और अपनी नियतों के ऊपर उठाए जाएंगे। तो क्या पता चला कि मारे तो वो भी जाएंगे, खौफ से काम जाता है बंदा सोच के, अगर आज ये अजाब आए सबसे ज्यादा कहाँ के मुसलमान मारे जाएंगे, जिन मुल्कों में ये चीजें अब लीगली जायज हो चुकी हैं। तो हर वक्त अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। ठीक है क्यामत के दिन बच जाएंगे जो भी होगा, लेकिन पकड़ तो आ सकती है। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इससे अवेयरनेस पैदा करने के लिए जिस हद तक मुमकिन अपना हिस्सा डाल सके डालें, ताकि कल हम वो मछली वालों की तरह अपना उजर तो पेश कर सकें कि माँ सीरत निला रब्बी, अपने रब के आगे हम उजर पेश करें। लेकिन जब हम खामोश हैं, हम बिल्कुल ऐसे हैं, तो ये सजाएं होंगी। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि क्या करें हम। तो आप में से सबसे पहले तो वो माएं जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, आप उन स्कूलों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। आप इस चीज की कबाहत को और इसकी अननेचुरल होने को, जिस जगह बैठकर पेरेंटिंग मीटिंग में बैठिए, आप सेमिनार्स में जाइए, बड़े बड़े फोरम्स हैं, वहां जाके कोल्ड फैक्ट्स पैदा करें। ये काम तो जानवर भी नहीं करते, ये काम तो आप देखिए कि किसी एक मखलूक में ये काम नहीं होता, लेकिन इंसानों का इंसानों में होना, और ये अक्ल के खिलाफ, समझ के खिलाफ। आप देखिए अगर इसी काम के ऊपर सारे ही लग जाएं तो अगली नस्लें कैसे पैदा होंगी। और आज इसका अगला तोहफा क्या है, किसी का वाकया मैंने सुना जो उन्होंने मुझे बताया कि दो लोग हैं, दो लड़की हैं, उन्होंने शादी की हुई है और दोनों ने शादी की हुई है, और अब बच्चा कहाँ से आना है शादी करके औरतों के, तो बच्चा अडॉप्ट किया है। एक मामा है और एक पापा है और एक स्कूल में बच्चा है जहां से ये खबर मिली। अब वो जब पेरेंट मीटिंग होती है ना, तो कभी एक आती है और कभी दूसरी आती है, ये मामा ये पापा हैं दोनों औरतें। अकल को लगता कितनी बेतुकी बात है। यानी आप देखिए अक्ल को ये बात नहीं सूट करती, और क्या कुछ है इससे आगे भी जो जरूरत नहीं और वक्त नहीं है इधर। और आने वाला बहुत बड़ा फितना होमोसेक्सुअलिटी का है। ये भी हमें बुरा लग रहा है, अभी अननेचुरल लग रहा है, लेकिन आज हमें एक लड़की लड़के का साथ बैठना, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप, बुरी नहीं लगती। पहले एक वक्त में ये बुरा लगता था, आज के वेस्टर्न पेरेंट्स कह लीजिए या बहुत ही जो लिबरल है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं करेगा लड़का जी किसी लड़की को पसंद, बैठेंगे जी, होगी बातें, खाएंगे पिएंगे, होटल में रहेंगे, चलो अच्छी बात है, पहले से ही देख लें कि शादी करनी है कि नहीं करनी। गोया कि आपकी हमारी सबकी तो ऐसे ही हुई थी, तभी निभ रही है, जो इतनी प्रोटोकॉल से ढूंढ के करते हैं उनकी तो निपटी कोई नहीं देखी गई। बहरहाल आने वाले 8-10 साल में फिर इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर आज मैंने आपने आवाज ना उठाई। देखिए एक नस्ल जब एक चीज पे स्टैंड ले लेती है ना, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। छोटी सी मिसाल देती हूँ, यहाँ टॉपिक नहीं है इसीलिए देने भी लगी हूँ। आप देखिए आज से 15-20 साल पहले पूरे वेस्ट में एक बहुत बड़ा शोशा था हिजाब के नाम पर, हिजाब 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 नहीं करना। आप पढ़िए जाके, मेरे पास सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि किस मुल्क में कहाँ से ये फितने उठे। कुछ सिस्टर्स ने इस पे स्टैंड लिया, चलते गए, आज हिजाब कोई इशू ही नहीं है, कोई रोकता कोई हिजाब करने से, सर पे कपड़ा लें, नीला लें, पीला लें, कोई नहीं रोकता, क्योंकि उनका स्टैंड लिया हुआ आज की इस नस्ल के काम आ गया। बस आज का फितना उससे अगला आ गया, आज इस दौर से आगे जरा थोड़ा सा फितने से खड़े होंगे, इंशाल्लाह अगले लोगों के लिए रास्ते होंगे। तो मेरा आपका काम आने वाली नस्लों के लिए रास्ते बनाना है, ये नहीं कि हम अपने बच्चों को ऐसी पगडंडियों पे छोड़ जाएं कि वो खुद लॉस्ट हैं, कि ये ठीक है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस फितने से, हमारी नस्लों को बचाए। वो पूरे मीन्स यूज कीजिए कि जिससे आपके अपने घरों में ये फितना ना आए। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। इतने नबियों के तذکرے के बाद अल्लाह अपने नबी से फरमाते हैं, कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा। ए नबी कहो हम्द है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें इसने बरगजीदा किया। ये है जिसको आप कहते हैं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेश किया जा रहा है, सल्यूट दिया जा रहा है, सलामी दी जा रही है। आज कितनी 21 तोपों की सलामी दी जाती है उन लोगों को जो कोई बड़ा कारनामा करते हैं। अल्लाह ने इस सूरत में नबियों के तस्करों के बाद ऐसे नबियों पर सलाम की बात की, इसीलिए हर नबी के साथ आप क्या कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये भी अल्लाह ताला का ऑनर है। इनसे पूछो अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिनको वो शरीक बना रहे हैं। सवाल शुरू हुआ 19वें पारे में, जवाब है 20वें पारे में। थोड़ा सा ये जो पहला रुकू अब आ रहा है, ये यहाँ से अब 20वां पारा शुरू हो रहा है, आयत 60 सूरत नमल। थोड़ा सा मैं इन सारी आयतों को पढ़ने का आपको अंदाज बताना चाहूंगी। आज के दौर में दो नाम बहुत मारूफ है एजुकेशन के स्टाइल में, ऑब्जर्व एंड इन्फर। पहले ऑब्जर्व करो, तलाश करो, फिर उसके बाद उसको पेश करो। सवालिया अंदाज आप देखेंगे, अम मई क्वेश्चन से प्यारा शुरू हो रहा है, सवाल उठाकर तौहीद के वो खूबसूरत दलाइल इसे एक रुकू में पेश कर दिए गए हैं कि जिसको समझने के बाद हो ही नहीं सकता कि बंदा शिर्क करे, और इससे ज़हनों में इल्म बैठता है। सवाल उठाया अगला जवाब नहीं दे सका, सोचो गौर करो कुछ, ओके जस्ट गिव मी अ क्ल्यू, ओके नहीं ओके आई विल टेल यू। जब आप पहले सवाल उठाते हैं ना तो सुनने वाला पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। आइए इस अंदाज को देखते हैं। इसमें अम्मन खलक समावाती वलर्द वानजल लकुम मिन अस्समा ईमान, भला वो कौन है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों को गाना तुम्हारे बस में न था। क्या जवाब है आपका मेरा? अल्लाह, बोलिए अल्लाह। देखिए सवाल उठाकर पूछा गया तो इंसान सोचता है ना। अब आप सोचें तरीका क्या है। अच्छा हाँ, आसमान से बारिश कौन करता है, सुबह नहीं थी शाम को क्यों हो गई। अच्छा ये इतना खूबसूरत बाग ये कैसे बन गया, अच्छा ये सब्ज पत्ते कैसे हो गए, अच्छा घास इतनी नरम क्यों है, अच्छा दरख्त की डंडे इतने सख्त क्यों हैं। जब आप सोचते जाएंगे ना तो खुद आपका भी वही जवाब आएगा कि ये सब अल्लाह ने किया। तो कहा अइलाहुमा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा अल्लाह भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि यही लोग राह रास्त से हटकर चले जा रहे हैं। एथियस लोगों को इस अंदाज से तबलीग करनी बहुत मौसर होती है कि कायनात पे गौर व फिक्र करवाएं। दूसरी मिसाल, और कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां कर दिए और इसमें पहाड़ों की मेहें गाड़ दी और पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए, क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी इन कामों में शरीक है? नहीं। तो जवाब क्या है? बल अक्सर हम ला यालमून, बल्कि अक्सर इल्म नहीं रखते, नादान है। क्या पता चला, कायनात पे गौर व फिक्र करना एक इल्म का बहुत बड़ा बुनियादी बाब है। आप देखिए कि इन आयात में भी और बल्कि पूरे कुरान में जगह जगह आपने देखा, लुक एट दिस अलम तारा, इधर देखो, दरबल्लाहु मसलन, कितने अंदाज है। एक सवाल लिखिए, कायनात पे गौर व फिक्र करने से क्या मिलता है? सूरज चांद सितारे पहाड़। आप अक्सर सोचते हैं कि कुरान ये किताब हिदायत है, इसमें तो बड़ी बड़ी बातें मुश्किल चीजें होती हैं, कोई ग्रामर सीखने की बातें होती हैं, कोई तजवीद पे जोर दो। यहाँ तो बस ये कहा जा रहा है कि जब इस क्लासरूम से बाहर निकलोगे ना तो जरा लुक एट द स्काई, अफला यंजुरून इलस समाई कई फरूफियत, कई ऊंटों को देखो तो क्या फायदा होता है। तो पहली बात यह है कि जब हम कायनात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह की बात मान रहे हैं, तो हमारा भी अल्लाह की इताअत करने को दिल चाहेगा। जैसे सूरज मुस्लिम है वैसे मुझे मुस्लिम होना है। दूसरी चीज कायनात पे गौर व फिक्र से जो आपको मुझे मिलती है वो क्या है कि कायनात में इतनी डाइवर्सिटी है, सूरज गर्म है, चांद ठंडा है, एक आसमान पे लाखों करोड़ों सितारे हैं, इतना डिफरेंट होने की वजह से आपस में लड़ते नहीं है। ये आपके मेरे लिए कायनात का सबक है, खामोश लेसन है। DQ 2009 का जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था उस पे मैंने ये जो बातें आपको बता रही उसी का एक चंक छोटा सा याद आ गया तो बता दिया। कायनात तुम्हारा उस्ताद है, ये सब चीजें हमें सिखा रही है, क्योंकि उस्तादों से भी तो इंसान सीखता ही है ना, और जो उनका अमल होता है वो हमारा अमल बनता है। फिर इसी तरह से एक तीसरी चीज क्या है कि आप देखिए सबका एक्सेल एक है। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से तो जानते ही होंगे, इस सेल में सब यूं घूम रहे हैं जैसे हम खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हैं। क्या पता चला कि सबका सेंट्रल पॉइंट अल्लाह सुबहाना तला की जात है। फिर इसे एक और बात भी बंदा सीख सकता है कि जिस रब ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई उसी ने तो शरीयत दी। तो जब सूरज चांद सितारे इतने खूबसूरत हैं तो उसकी दी हुई शरीयत और सूरत मायदा और सूरत नमल और सूरत नूर ये क्यों नहीं खूबसूरत होती? ला मुहाला तौर पे भी कुरान भी अच्छा लगता है। और आखिरी बात यह है कि जिसकी इबादत उसकी इताअत, रब को रब कहते हो तो उसकी इताअत भी करो। अब यहां से एक और चीज आगे जिसमें इंसानी जज्बात की बहुत ही खूबसूरत तर्जुमानी है, हाईलाइट कीजिएगा इस आयत को। अब मैं जीबुल मुस्तर इजादा हुआ यक्षिफुस्सू, कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो इसे पुकारे, और कौन है इसकी तकलीफ को रफा करता, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है, कि अल्लाह के साथ कोई और जात भी ये काम करने वाली है? लेकिन बात यह है कि तुम थोड़ा ही सोचते हो, कलीलम मा तज़क्करून। दो की कबूलियत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है ना, अल्लाह ने हजरत ईसा मूसा नूह इब्राहिम किसी को ये इख्तियार नहीं दिया। कितनी खिदमत की दीन की नूह अलैहिस्सलाम ने, कितनी कुर्बानियां और हिजरतें की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और कितने थपेड़े खाए हालात के नबी सल्लम ने दीन के रास्ते में, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआओं की कबूलियत अपने हाथ में रखी। बहुत बड़ा शिर्क आज बरसगीर पाक व हिंद में जो फैलाया गया है वो शिर्क फिर दुआ है। ये आयत आपके मेरे लिए उसकी उसका निगेशन है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं करता। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं इसमें? आज तक किसी को नहीं आप कहता सुनेंगे कि हजरत ईसा ने दुनिया बनाई, अब्दुल कादर जिलानी ने आसमान बनाया, लाल शहबाज कलंदर ने जो सूरज बनाया, कोई नहीं ये कहता। सबको पता है कि वो सब अल्लाह के बंदे थे और ये सब कुछ तो उनके पहले बन चुका था। और ये भी अल्लाह की शान है कि कायनात पहले बनी, इंसान बाद में आया, वरना हो सकता है कोई ये भी दावा कर देता कि आसमान मैंने बनाया। शिर्क जितना भी हुआ है ना दुनिया में, अमूमन शिर्क फिर दुआ हुआ, तसर्रुफात में शिर्क, बुजुर्गों को खुदाई में शरीक समझ लिया, किसी को बड़ा समझ लिया, किसी को छोटा समझ लिया। तो जरूरत है इस बात की कि अल्लाह पर नजरें लगाई जाए। फिर दूसरी इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है और वो क्या है कि दुआ की असल अम्मई युजीब अल मुस्तरा। इस्तरार क्या होता है? इंसान का एक रूहानी तजुर्बा होता है। जब बंदा इतना मुस्तर हो जाए कि अल्लाह को अपने कौल फेल हाल बोलिए रवैये से दिखाए कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और जो दुआ पर मैं करते हैं ना अल्लाह, उसमें से हर दुआ के साथ पांच में से एक काम जरूर करता है, लिख लीजिए आपके मेरे फायदे का है। क्योंकि जितना ज्यादा अल्लाह ताला के ऊपर नजरें लगाएंगे, उतना ज्यादा आपको मुझे अल्लाह ताला की कदर भी आएगी और उसके ऊपर अपनी नजरें भी लगाएंगे। सबसे पहली चीज, सबसे छोटे दर्जे की फौरन वही चीज दे देता है जो आपने मांगा, अल्लाह ने दिया, आप कहते हैं वाह मजा ही हो गया, बहुत ही फायदा हो गया। लेकिन ये सबसे इतना दर्जा है। दूसरा रिस्पॉन्स कहता है हाँ लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन ठहर जाओ, थोड़ी देर के बाद दुआ कबूल होती है। तीसरा दर्जा क्या होता है? तुम्हारी मांगी हुई चीज से बेहतर अता करूंगा। तुमने सुजुकी कार मांगी, मैं तुम्हें मर्सिडीज दूंगा, कोई बात नहीं, अल्लाह उससे ज्यादा देता है। चौथा क्या है? तुम्हारे मांगने पर तुम्हारी चीज तो नहीं मिलेगी वो, हाँ फुला मुसीबत टाल दूंगा। आपके ऊपर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ रही थी, मसलन किस्मत में लिखा हुआ था कि हादसा होगा और मैं मांग रही थी गाड़ी, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, अल्लाह कहता फरिश्तों इसको गाड़ी ना देना, हाँ गाड़ी मिली तो हादसा होना है, ना गाड़ी दो ना एक्सीडेंट हो, तो मुझे उससे बेहतर मिली। अब गाड़ी मिले और हादसा हो जाए ये बेहतर है या गाड़ी ना मिले? और पांचवी चीज, तुम्हारी इस दुआ को आखरत के लिए महफूज कर लेता हूँ। अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा, बताइए इसमें पांचों में से कोई भी जवाब ऐसा है कि जो आपके और मेरे दिल को ना लगता हो? मांगिए तो सिर्फ रब से मांगिए और वो मुस्तर की पुकार सुनता है। इमाम बुखारी की माँ अपने बच्चे के लिए आंखें मांगती है, अल्लाह तूने बच्चा दिया, ये आंखें नहीं रखता तो किससे हदीस लिखेगा? ए अल्लाह मैंने बच्चे को तेरे दीन के लिए डिवोट किया, अल्लाह ने मुस्तर माँ की दुआ सुनी। इसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक्या है, सही वाक्या है, किसी एक डॉक्टर है सऊदी अरब के, तो उन्होंने पेश किया, मैंने उस पर एक पूरा सेशन दिया हुआ है, और किताब है दुआओं की कबूलियत के वाक्यात दारुस्सलाम की छपी हुई, उसमें भी ये वाक्या मौजूद है। खुलासा क्या है कि एक डॉक्टर जो बहुत मशहूर मारूफ थे, वो किसी एक शहर से सऊदी अरब के दूसरे शहर में जाने वाले थे। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, ऐन वक्त पे पता चला कि मौसम खराब है, लेकिन खैर फ्लाइट चली, थोड़ी सी फ्लाइट अभी चली तो अनाउंसमेंट होगी कि मौसम की खराबी की वजह से आगे इधर उधर नहीं जा सकते, तो हम किसी भी अननोन जगह पे उतरने वाले हैं। फ्लाइट उतर गई, ये बहुत परेशान थे, गए उधर उतरे, जब थे इन्होंने जाके उसे कहा कि मेरी तो एक बहुत बड़ी मीटिंग है, ये है वो है, उन्होंने कहा हमारा कसूर क्या है इसलिए कि मौसम खराब है? किसका मौसम? ये कहते मैं बहुत जल्दी में था, नेक्स्ट फ्लाइट पता नहीं कब होगी। उन्होंने कहा बहुत जल्दी में जाइए, आप टिकट लेकर टैक्सी ले लें। कहते मैं बाहर आया, मैंने टैक्सी ली, उसको फौरन कहा कि चलो टैक्सी में, दो ढाई घंटे में पहुंच जाऊंगा, जहाज पता नहीं कब आएगा। कहते हैं कि उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर गुजरी, जब टैक्सी में बैठे तो मौसम इतना खराब था कि टैक्सी ने चलने से इनकार कर दिया। किस्सा मुख्तसर, बिल्कुल एक वीरान जंगल में उनकी टैक्सी रुक गई और अब उनके पास कोई और चारा नहीं था कि वो आगे ना जाए, परेशान है, दुखी है। इतने में दूर एक घर के अंदर लाइट जलती देखी, नॉक किया, पूछा कौन है, कहा जाइए, मेहमान नवाज आपको होता है, सऊदी बहुत होते हैं। उन्होंने कहा इस तरह मुसाफिर हूँ, घर वालों ने खूब खातिर खिदमत की, चार छः घंटे गुजरे, मौसम थमा, कहा वापस जाता हूँ। तो पूछा तुम हो कौन? वो एक औरत थी अंदर जिसने अपनी बात सुनाई कि मेरा बेटा है, घर में किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी, कहने लगी कि मेरा बेटा है बहुत बीमार है, कई दिन से इसके इलाज में, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस शहर में इसका इलाज नहीं हो सकता, हाँ फलां शहर है वहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्टर है उसके पास इसको ले जाओ। जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने मुझे 6 महीने बाद का टाइम दिया और मेरा बच्चा तो इतना बीमार है, तो वो मेरे बच्चे का कौन सा डॉक्टर, क्या हुआ है? जब नाम लिया वही डॉक्टर वही बच्चा, और दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने उस बच्चे को देखा, इलाज किया। फिर सारी बात के बाद जो उन्होंने अपना ब्रीफ मैसेज दिया था कि ये मौसम का खराब होना, जहाज का कहीं और उतरना, टैक्सी का रुक जाना, ये सिर्फ एक एक मुस्तर माँ की पुकार थी कि जो मुझे उठाकर उधर ले गई। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, इमाम अहमद का भी एक याद आ रहा है, लेकिन बात आपको बताऊं कि सिर्फ रब को पुकार के देखे। हम लोगों को ढूंढते, फोन नंबर ढूंढते, सेल नंबर मांगते, किससे पूछूं, किधर जाऊं, ये सबाब है। लोग भी तब आपकी मदद करेंगे जब अल्लाह उनके दिल में डालेगा। साथ रहता बच्चा नहीं आपकी मदद कर सकता, शौहर आपकी मदद नहीं कर सकते। तो जब आप अल्लाह पर डालते हैं, अल्लाह गैब से आपके सबब बनाता है। और ये सिर्फ बीमारियों में नहीं, दीन का काम करने में मैंने इसको जितना देखा है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसे अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाता है, सिर्फ ये कि आप तड़पे तो सही, आपकी आंख से एक आंसू तो निकले कि अल्लाह मुझसे दीन का काम ले, अल्लाह यहाँ कोई काम ले ले, अल्लाह इधर कुछ करा दे। आप देखिए आप मुस्तर होके पुकारें कि अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, ना हीला ना वसीला, अल्लाह ताला मदद करता है और अल्लाह ताला हमारी तौहीद को पुख्ता कर दे। फिर एक और चीज, वो कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? आपका दिल क्या गवाही देता है? कोई नहीं करता। बहुत बालाओ बरतर है अल्लाह इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। और कौन है जो खल की इब्तदा करता है फिर इसको दोहराएगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है इन कामों में हिस्सेदार? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। यही है सारी चीजें जिसमें अमूमन शिर्क होता है। इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वो तुम्हारे माबूद तो ये भी नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। बल इदार का इल्म हम फिल आखिरा, बल हम फी शक के मिनहा, बल हम मिनहा अमून। तीन चीजें, बल्कि आखरत का इल्म तो इनसे गुम ही हो गया। अल्लाह से दूर होने की पहली वजह आखरत तो है ही नहीं। और हकीकत है दुनिया के इल्म में इतना मसरूफ हुए कि आखरत के लिए ना वक्त बचा, ना आखरत के लिए माल बचा, ना आखरत के लिए ख्वाहिश ही रही, और सच्ची बात है कि आखरत के लिए हिम्मत भी ना रही। इस दुनिया को पाने के लिए आज हमारी नस्लें इतनी हाइपर हुई, इतना जोश चढ़ गए इस दुनिया को पाने का, कहते हैं किसने देखी आखरत, दुनिया नकद आखरत उधार। अल्लाह कहते हैं आखरत का इल्म ही कोई नहीं तो मांगे के कहां से, बल्कि ये इसकी तरफ से शक में है। दूसरा कीड़ा, अमल का दुश्मन शक। शायद 10वीं दफा ये जुमला बोल रही हूँ पिछले 20 बारों में, अमल का दुश्मन शक, अमल का दुश्मन शक। जो काम आप नहीं कर पा रहे, यकीनन इस वजह से नहीं कर पा रहे कि आप उसके बारे में शक का शिकार हैं। और तीसरी बात, बल्कि ये इससे अंधे हैं। कौन सा अंधापन है कि इनको छोटी सी दुनिया दिखती है लेकिन दूर की आखिरत इनको नहीं दिखती। ये मुनकरीन कहते हैं, क्या हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो चुके होंगे तो हमें वाकई कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई और पहले हमारे अबा उस्ताद को भी दी जाती रही, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं, ओल्ड स्टोरीज, बोरिंग, जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। आज भी कुछ लोग रौनक से यही कहते हैं, 1400 साल पुराना कुरान पढ़ती हो। एक सिस्टर थी, नई नई आई, बहुत अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक था, यंग थी बिल्कुल, तो कहने लगी कि मैंने कुरान कोर्स तो शुरू किया लेकिन मैंने अपनी दोस्तों और अपने घर वालों को ये नहीं कहा कि आई एम डूइंग कुरान कोर्स। कहा अच्छा जी, अब क्या कहती हैं? कहती मैं उनको कह रही आई एम डूइंग अरेबिक कोर्स, लैंग्वेज कोर्स। कहती अगर मैंने कहूंगी ना मैं कुरान कोर्स कर रही हूँ तो कहेंगे हैं इतनी पेंडू हो तुम, इतनी बैकवर्ड हो, अरबिक लैंग्वेज सीखना एक फ़ख्र है, तो मैं वो सीख रही हूँ। ये हाल जब मुसलमानों में हो जाए आप दूसरों को क्या कहेंगे, कि वो आपके दुश्मन है? नहीं, असल बात ये कि हम खुद अपने दीन पे शर्मसार हैं। कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ नबी, इनके हाल पर रंज ना करो और इनकी चालों पर दिल तंग ना हो। वो कहते हैं ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो क्या जबकि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो इसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। आप देख रहे हैं अक्सर अक्सर शुक्र नहीं करते, अक्सर इल्म नहीं हासिल करते, अक्सर ख्वाहिशों में, यानी अक्सरियत का प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह ताला की बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। हकीकत है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा करते। वइन्ना रब्बक लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युलिनून। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ इनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमानों जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं जो एक वाज़े किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। यानी इतनी कुदरत वाला रब है तो उसको छोड़कर ये लगे, तो फिर हिदायत क्यों नहीं मिली? इसलिए कि तलब नहीं थी। याद रखिए, जिसके अंदर या जिसके बाहर हिदायत की तलब होगी उसको हिदायत जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और हिदायत क्या है? अगली आयत में उसका जवाब, इन हाज़ल कुरआन यक़ुस्सु अला बनी इसराइल। ये वाक्या है कि ये कुरान बनी इसराइल को अक्सर इनकी बातों की हकीकत बताता है जिनमें ये इख्तलाफ रखते हैं, और ये हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। दुआ करें इस किताब से हमें हिदायत भी मिल जाए और रहमत भी। हिदायत कब मिलती है? जब कुरान को समझ के पढ़ते हैं। और कुरान रहमत कैसे है? जब तजवीद के साथ अच्छे लफ्ज़ों से पढ़ते हैं। एक एक लफ्ज़ पे दस दस नेकियों से आपका दिल आपका घर रहमतों से भर जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने का भी सही और इसको समझने का भी सही शौक़ भी दे और मौका दे, और जब कोई ऐसा मौका आए तो उसको कबूल करने की तौफीक भी अता फरमाए। फरमाए इन्ना रब्बक यक़्ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवा अल-अज़ीज़ुल अलीम। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा और वो ज़बरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। बस ऐ नबी अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम सरी हक पर हो, और बात यह है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये कौन से मुर्दे हैं? जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, जिनकी फितरत मसख हो चुकी है। और याद रखे, गुनाहों का ये कॉन्सिक्वेंस होता है, गुनाहों के असरात में एक सबसे बड़ा असर ये होता है कि दिल मुर्दा होने लगता है। अल्लाह ताला दिलों की मुर्दगी को दूर कर दे। ऐसा बंदा हर गुनाह की दावत पे लब्बैक कहता हुआ भागेगा, लेकिन नेकी की दावत उसको अच्छी नहीं लगती। और साथ ही फरमाया, ना इन बहरों तक अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात इन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं और फिर फरमा बरदार बन जाते हैं। अल्लाह हम सबको ऐसा कर ले। आप याद रखिए कि आज के दौर का जो बहुत बड़ा इशू है, एक तो यह है कि गुना तो करना सो करना, गुना करके ना डरना, ये फैशन है। वो सोचते हैं कि इसमें हमारा स्टेटस कम हो जाए अगर हम कहें हमें अल्लाह से बड़ा डर लगता है। तो लिख लीजिए, जहन्नुम से ना डरना, अल्लाह से ना डरना बदतरीन बहादुरी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप कहते हैं हमें किसी से नहीं डर लगता, और नेकियों से डरना बदतरीन बुजदिली है। आज नेकी करने के नाम पे जान निकल जाती है, हाय बड़ी मुश्किल है, नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और ये सारे हिस्से से ये भी पता चला कि नबी को अल्लाह कह रहे हैं कि आप उनको नहीं सुना सकते जो नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, नहीं बोलना चाहते। तो क्या पता चला कि लोग सुने ना सुने, आपको इससे कोई फिक्र की बात नहीं। आपका काम क्या है कि आप बात करते जाएं। अब इसके बाद क़यामत के कुर्ब की एक अलामत दी गई। वइज़ा वक़ल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाबतम मिनल अर्द। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आन पहुंचेगा तो हम इनके लिए एक जानवर ज़मीन से निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। इसको दावतुल अर्ज़ कहते हैं। क़यामत की जो बड़ी 10 अलामतें हैं, बिल्कुल क्लोज सर्कट यानी बड़ी अलामत कुबरा, उसमें एक यह है कि ये जानवर निकलेगा। इसमें मुख्तलिफ जानवरों की खूबियाँ होंगी, और हदीसों से हमें पता चलता है ये जानवर जब निकलेगा इसकी ज़ुबान पर यही आयत होगी। आप हाईलाइट करना चाहें तो कर लें, अन्नन्ना सकानु बि आयातिना ला युकिनून। और आपने फरमाया ये उस वक्त होगा जब दुनिया में लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ देंगे। छोड़ा भाई, आज हम कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हुदहुद बोला, यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो जानवर बोलेगा, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। और फिर उसके बाद क्या होगा? और ज़रा तसव्वुर करो इस बात का, जब हम हर उम्मत में से एक फ़ौज की फ़ौज इन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयात को झुटलाया करते थे, फिर इनको इनकी अकसाम के लिहाज से दर्जा बदर्जा मुरतब किया जाएगा, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो इनका रब इनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयात को झुटलाया दिया हालांकि तुमने इनका इल्मी अहाता ना किया, अगर नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे, और इनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा इन पर पूरा हो जाएगा। तब वो कुछ ना बोल सकेंगे, क्या इनको सुझाई नहीं देता था, क्या हमने रात इनके लिए सुकून हासिल करने के लिए बनाई और दिन को रोशन किया था, और इसमें बहुत सी निशानियां थी इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यहाँ क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इल्मी अहाते की बात की। फिर यहाँ नोट कीजिए कि आज मुसलमान इस्लाम की नामुकम्मल तस्वीर बने हुए हैं, और इस अधूरी तस्वीर को देख कर लोग इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। जिस वक्त मुसलमानों का इल्मी अहाता मजबूत होगा, इल्म को उस तरह से लेंगे कि लोगों को दीन और दुनिया की तरक्की का एक अमली नमूना बनकर दिखाएंगे, तो लोग खुद इस्लाम से इम्प्रेस होंगे। आप देखिए कि आपके पजल्स हों, बच्चों वाली माएँ इसको समझती हैं, पजल का एक टुकड़ा पकड़ लें, क्या तस्वीर पूरी नजर आती है? नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते हैं तो फिर वो एक पूरी तस्वीर बनती है। आज हम इस्लाम में पिक एंड चॉइस का जब शिकार होकर सिर्फ एक टुकड़े को इस्लाम कहते हैं, तो नुकसान क्या होता है कि दूसरों को इस्लाम फिर अच्छा भी नहीं लगता। उदखुलू फिस्सिल्म काफा का हुक्म था, नहीं मानना आज अपनी मर्जी का दीन है। किसी को तबलीग अच्छी लगी सिर्फ तबलीग, किसी को जिहाद अच्छा लगा सिर्फ जिहाद, किसी को हुकुकले बात अच्छे लगे सिर्फ हुकुकले बात, किसी का नमाज की तरफ मैलान हुआ उसी की बात, ये सब जोड़ी है फिर पजल पूरा होगा। आप देखिए कि किसी की मशीनों, मिसाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन है काम करते हुए छुट गई, आप क्या हुआ आप मैकेनिक को बुलाते हैं, अब वो कहता है ये मशीन चल नहीं रही। ओहो अच्छा, बाहर से जाए आपकी गाड़ी में से एक तार निकाले लाके मशीन में लगा दे, मशीन फिर भी नहीं चलेगी। किचन में जाए और आपके टोस्टर ओवन में से कोई एक पुर्जा निकाले डाल दे, भाई वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन का पुर्जा लगाओ। जब मुख्तलिफ मशीनों के पुर्जे लगाकर आप एक गाड़ी बनाते हैं तो वो गाड़ी नहीं चलती। आज हमारे इस्लाम का ये हाल है, एक पुर्जा कुफर का, एक क्रिश्चियनिटी का, एक इस्लाम का, वो जिसको शेर में भी इलामा इकबाल ने कहा ना कि वजह में हो तुम कुछ और कता में हो कुछ, और तुम वो मुसलमान हो जिसको देखकर शर्माए कोई और। आप सब समझते हैं शेर को, असल बात यह कि पूरा इस्लाम, मुझे तो इस साल तो और ही ज्यादा यकीन हो गया। मैं बड़ी खौफजदा थी कभी अपने बारे में कि पता नहीं मैं क्या बात करूं, मुझे कई चीजों का गुमान आता था। मेरा दिल इतना इस बात पे इस साल और खुल गया कि उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दो कि दीन पे अमल करो। यानी मुझे खौफ क्या था अपने से कि मैं कॉम्प्रोमाइजिंग होकर ढीली ढीली बातें ना करके आप खुश कर दो, नहीं पूरा इस्लाम ले। लोग कहते हैं जो है वो भी छोड़ दो फिर तो दूसरे लोग तुमसे खुश रहेंगे, इस्लाम और कुरान क्या कहता है, जो छोड़ा हुआ वो लो फिर मैं तुम्हारे दुश्मनों से निपटूंगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें यकीन दे दे, सीधी सी बात है। आप डॉक्टर का दवाई पे अमल करते हैं, बच्चा बीमार है बुखार है ये कैप्सूल है इसको इस वक्त खाना है, इधर गोली है ये शरबत पीना है ये ट्यूब मलनी है, पूरा अमल करते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। आप गोलियों को पकड़ कर पीस के जिस्म पे मलना शुरू कर दें, ऑइंटमेंट खिलाना शुरू कर दें, सीरप आप छोड़ ही दें, सेहत होगी। मनमानियां करने वाले कभी नहीं कामयाब होते, आज हम इस्लाम के नाम पे मनमानियां करना चाहते हैं और मजे की बात है दूसरों से भी मनवाना चाहते हैं, कहो तुम भी ये करो, तो अल्लाह की किताब झूठ नहीं बोलती। ये किताब मेरे आपके लिए एक नेविगेटर है, ये रोक लेती है, मेरी लिमिट है इस किताब की आयत, मुझे अपना कोई नजरिया आपको नहीं देना। कुरान आपको मुझे पैगाम दे रहा है कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और नहीं समझ आया तो क्यामत का मंजर सामने कर लो, व यौम युनफखु फिस्सूर, और क्या गुजरेगी उस रोज जबकि सूर फूका जाएगा। 3 सेकंड तक मुहासबा करें। आज दुनिया की खुशी या दुनिया की तसल्लियों पे, और हराम को हलाल और जायज को नाजायज कर भी लिया, फलां का फतवा फलां ये कहते हैं, आज के दौर में ये इस मुल्क में ये उस मुल्क में ये, मान लीजिए आपने मान लिया, कितने दिन जिएंगे उस हुक्म पे अमल करके, लेकिन जब कब्र में जाएंगे और उसके बाद क्यामत के ये धमाके होंगे उस वक्त कौन हमारे काम आएगा। हमेशा उससे इंस्ट्रक्शंस लीजिए जिसने आखिरी दम तक आपका साथ देना है, जो बीच रास्ते में छोड़ने वाले हैं उनसे आप जान छुड़ा लें, क्यों कि वो आपको भी डुबोएंगे और खुद भी डूबेंगे फिरौन की तरह। तो अल्लाह ताला क्यामत के मंजर से आपके मेरे दिल को नरम करना चाहते हैं, और होल खा जाएंगे वो सब जो आसमानों जमीन में, यानी क्यामत के धमाके से सब बेहोश हो जाएंगे सिवा इन लोगों के जिन्हें अल्लाह इस हॉल से बचाना चाहे, और वो सब कान दबाए इसके हजूर हाजिर हो जाएंगे। आज तो पहाड़ों को देखता और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर इस वक्त ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे, कब क्यामत के दिन। कुरान में क्या आता है, कलेह निल मनफूश, थूकी हुई रुई की तरह होंगे। जब हम जहाज में दिन में सफर करें और बादलों से गुजरें तो अक्सर ये बात याद आती है, और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ देखें ये आज जिस तरह बादल उड़ रहे हैं ना इस तरह पहाड़ उड़ेंगे, कितना जबरदस्त धमाका होगा क्यामत का। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज को हिकमत के साथ उस्तवार किया है, वो खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। और असल बात जो मेरे आपके मतलब की, मन जा बिल हसनति फलकु खैरु मिन्हा, जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे उससे ज्यादा बेहतर सिला मिलेगा, यानी वेजिस से ज्यादा पे मिलेगी, जो डिसाइड किया था उसे बात हुई थी $5 की, $6 दे देगा, अल्लाह साथ दिलवा देगा, कम नहीं देगा। जन्नत में अल्लाह अपने एहसान के जरिए से लोगों को पहुंचाएगा, और ऐसे लोग इस दिन के हॉल से महफूज होंगे जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग ऊंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और जजा पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो। इधर कोई अल्लाह ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा गुना नहीं देने कि किसी ने थोड़ा गुना किया और अल्लाह ताला उसको ज्यादा गुनाहों पे ले आए। अब सवाल पैदा होता है कि बार बार कुरान पाक में आप पढ़ते हैं पलड़े भारी नेकियां भर गई, पीछे सूरह आराफ में डिटेल से बात भी कर चुके हैं ना, जिसके पलड़े भारे होंगे सकुलत मवाजीन हो। तो सवाल पैदा होता है कि ये बार बार ये बात क्यों पेश की जाती है, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी, मोहलत दी, समझ दी, तौबा का दरवाजा खोला रखा, अपनी पहचान करवाई, आईक्यू लेवल हमारा बुलंद किया, सारे नेमते जो दुनिया में दिए उसको इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया, इसके बावजूद भी इंसान नेकियां ना करे। यही गैजेट, यही नेमते दुनिया की चीजों के लिए तो इस्तेमाल में आए, लेकिन दीन के लिए बात में आए तो सोच में पड़ जाए, ये है असल में नुकसान। और याद करिए कि क्यामत के दिन उसके पलड़े भारी होंगे जिसने पहले नेकी की। लिखिए स्टेप्स हैं, पहले दर्जे पे नेकी की, फिर उसको संभाला, फिर उसको बढ़ाया, फिर उस पे जमा। वरना नेकी करना आसान मगर उसको संभालना मुश्किल, उसको आगे बढ़ाना और भी मुश्किल, और उस पे मुस्तकिल तौर पे जमना ये सबसे मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता आप सोच रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोग सोच रहे हो, चलो 10 दिन के बाद जान छूट जाएगी इनकी, 20 पारे हो गए, 10 रह जाएंगे, लिख लें। आपका मेरा असल इम्तिहान रमजान के बाद शुरू होगा। रोजा रख के आते हैं, बैठते हैं, क्या मिलता है? घर में भी यही कुछ करना था, यहां भी कर लिया। असल मुश्किल तब आएगी जब रमजान के बाद आप इस कुरान के लिए जमेंगे, कोई सेकंड थॉट ना आ जाए अल्लाह के दीन के रास्ते में। फिर देखिए पलड़े कितने भारी होते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम अपनी नेकियों को संभाल सकें। बड़े बदबخت हैं वो लोग के जो नेकियां करें और उसके बाद उसको जाया कर दें। फिर फरमाया नबीन से, कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि शहरे मक्का के रब की बंदगी करूं जिसने इसे हरम बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। कितना प्यारा हुक्म अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर लिया, तो आपको मुझे भी तो इसी बात का हुक्म है। अब जो हिदायत इख्तियार करेगा वो अपने ही भले के लिए हिदायत इख्तियार करेगा, किसी को फायदा नहीं होगा मेरी हिदायत से और किसी को नुकसान नहीं होगा मेरे गुमराह होने से। और जो गुमराह हो इससे कह दो कि मैं तो बस खबरदार करने वाला हूं, यानी पीछे ना पड़ो, बस इशारा कर दो, कल तुम्हें खुद अपनी बदबख्ती का यकीन आएगा। कितने बदबख्त थे तुम, कितने महरूम थे तुम, तुम्हें अल्लाह ने इतने नेकियों के मौके दिए, तुमने फेंक दिए। हाथ में से रेत के जर्रों की तरह नेकी फिसली, किसी और ने कर ली, किसी और ने ले जानी वो नेकी, तुम महरूम रह गए। और तुमने गुनाहों के मौके को ऐसे सेंध सेंध के रखा कि शायद इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। इनसे कहो तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अन करीब वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम इन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब बेखबर नहीं उन आमाल से जो तुम लोग करते हो। देखिए कितने खूबसूरत पैगाम पे सूरत नमल खत्म होती है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि इसके ऊपर अपने आपको जमा सकें। तिलावत सुनेंगे हम इसी सूरत में से, आयत 87 से 93 की, खोल लीजिए और गौर व फिक्र और तदब्बुर का वक्त है।
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.